राधिका के डैड मिस्टर गौतम मर्चेंट अर्पित के प्लान से सहमत नहीं थे। राधिका की तबीयत खराब थी, ऐसे में उसका बच्चा पैदा करना उसकी सेहत के लिए सही नहीं था। हालांकि वो राधिका के सालों पहले उठाए कदम से अब तक नाराज थे, लेकिन फिर भी उन्हें उसकी फिक्र थी। वहीं गौतम के कहने पर अर्पित ने ईशानी को मैसेज छोड़ा ताकि वो अपनी बेटी के साथ तैयार रहे। दूसरी तरफ इशिका राधिका के ख्यालों में खोई हुई नींद के आगोश में थी। उसके नंबर पर अर्पित के मैसेज तो आ रहे थे, पर उनके एक्सपेरिमेंट में फेल हो जाने के बाद ईशानी का उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा था। इस वजह से ईशानी ने उनके नंबर ब्लॉक कर रखे थे। हालांकि ईशानी जानती थी कि उन सब की नज़र अभी भी उसके ऊपर है। इशिका की नींद तब टूटी जब रूही स्कूल से आने के बाद दौड़ती हुई उसके पास आई और उसकी गले लग गई। वो अपनी मासूम आवाज में बोली, मम्मा क्या हुआ, आप अब तक क्यों सो रही हैं, आपकी तबीयत खराब है क्या? रूही के हड़बड़ाने पर इशिका की नींद टूटी। वो उठकर बैठी और उसने रूही को अपने सीने से लगा लिया। वो उसे सहलाते हुए ईशानी की तरह सॉफ्ट और धीमे टोन में बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चा, बस सर में थोड़ा दर्द था, इस वजह से नींद आ गई। इशिका की बात सुनकर रूही जल्दी से उससे अलग हुई और अपने छोटे छोटे हाथ इशिका के माथे पर रखकर मासूमियत से बोली, लाओ मम्मा मैं आपका सर दबा देती हूँ। उसकी इस हरकत पर इशिका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। इशिका की ज़िंदगी बाकी लोगों से काफ़ी अलग थी। उसने शादी और बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचा था। वो हमेशा से करियर ओरिएंटेड रही थी। पिछले काफ़ी दिनों से वो रूही के साथ थी और जब वो उसे मम्मा कहकर बुलाती थी तो इशिका को दिल ही दिल में बहुत सुकून मिलता था। रूही जिस तरह से इशिका की परवाह कर रही थी, ये देखकर इशिका के चेहरे पर मुस्कान तो थी पर आंखों में हल्की नमी के साथ। वो रूही को फिर से अपने सीने से लगाते हुए सहलाकर बोली, अब इसकी ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो आओ मैं आपको चेंज करवा देती हूँ और साथ में कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। इशिका रूही को चेंज करवाने लगी। वो उसे काफ़ी प्यार से देख रही थी। अचानक उसके मन में अभिमन्यु और अपने बच्चों का ख्याल आया, पर अगले ही पल इशिका के चेहरे पर मायूसी छा गई। वो अभिमन्यु से प्यार करती थी, लेकिन हालात जो भी थे उससे यही लगता था कि उन दोनों के रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। इशिका ने गहरी सांस ली और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपने मन में कहा, जब भी सोचती हूँ सब ठीक चल रहा है तब सिचुएशन ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अगर मुझे ईशानी और उन लोगों के बारे में कुछ पता नहीं चला तो मैं यहाँ फंस कर रह जाऊँगी। मुझे इस आदमी की पत्नी बनकर नहीं रहना, मुझे इससे नफ़रत है। इशिका को खोया हुआ देखकर रूही ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ मम्मा, आप क्या सोच रही हैं, कहीं दादी ने फिर से आपके ऊपर गुस्सा तो नहीं किया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो बाहर आओ, मैं आपके लिए आपकी फेवरेट हॉट चॉकलेट बनाकर देती हूँ। इशिका ने रूही को टालने के लिए कहा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगी। इशिका ने ईशानी की जगह इसलिए ली थी ताकि वो सच का पता लगा सके, लेकिन जब से उसने ईशानी की जगह ली थी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी दलदल में फंस गई हो, जहाँ बाहर निकलने की कोशिश करने के चक्कर में वो और उसमें धंसती जा रही थी। उन सबसे अलग तरुण इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी किसी ने एक झटके में उसके केबिन का दरवाज़ा खोला। तरुण ने हड़बड़ाकर सामने की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए थे। युविका, इस वक्त तुम मेरे केबिन में क्या कर रही हो? अपने सामने युविका को देखकर तरुण उस पर बिफरते हुए बोला, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे ऑफिस में कदम तक नहीं रखोगी, तुम्हारी वजह से ही मेरी चौधरी एम्पायर्स के साथ डील नहीं हो पाई थी। तरुण गुस्से से युविका की तरफ देख रहा था। चौधरी एम्पायर्स युविका की फैमिली की थी। ईशानी को सहारा बनाकर तरुण चौधरी एम्पायर्स के साथ डील करना चाहता था ताकि उनकी कंपनी की हालत कुछ सुधर सके, लेकिन युविका के बीच में आने की वजह से सब खराब हो गया था। इसी का बदला लेने के लिए तरुण ने ईशानी और युविका की दोस्ती तक खत्म करवा दी थी। तरुण की बात सुनकर युविका ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू करके नरम लहजे में कहा, सालों पहले जो भी हुआ था मैं उसे ठीक करने के लिए ही यहाँ आई हूँ, मुझे उस वक्त गलतफहमी हो गई थी, मैं अब सब ठीक करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पास एक ऑफर लेकर आई हूँ, एक नया प्रोजेक्ट करते हैं। युविका ने जो भी कहा था उसे सुनकर तरुण को यकीन नहीं हो रहा था। वो आंखें फाड़कर उसकी तरफ देख रहा था। तरुण का ये एक्सप्रेशन देखकर युविका ने भौहें चढ़ाई तो तरुण ने सिर हिलाकर कहा, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, अचानक तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? जो तुम मेरे पास प्रोजेक्ट लेकर आई हो, वैसे इस प्रोजेक्ट करने की क्या शर्त है? तरुण युविका को अच्छे से जानता था, वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं थी। वहीं तरुण के सीधे सीधे पूछने पर युविका ने कंधे उचकाकर कहा, बस एक छोटी सी शर्त है कि इस प्रोजेक्ट में ईशानी भी इन्वॉल्व होगी, ये कंपनी उसकी है और तुमने उसे हाउसवाइफ बनाकर छोड़ दिया है, सोच लो, डील चाहिए या अपनी मेरीगो को सेटिस्फाई करना है। तुम्हारे पास सोचने के लिए एग्जैक्टली 2 मिनट है, बोलते हुए युविका ने अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। तरुण ने एक पल उसकी तरफ घूर कर देखा और फिर अपने मन में कहा, अगर ईशानी यहाँ पर आई तो उसे कंपनी के असली हालात के बारे में पता न चल जाए। लेकिन युविका चौधरी खुद यहाँ प्रोजेक्ट लेकर आई है, ये छोटी बात नहीं है। मुझे कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, बस थोड़ा रश्मि को संभाल कर रखना होगा। मैंने ईशानी से कहा था कि मैं रश्मि से ब्रेकअप कर चुका हूँ। तरुण अपने ख्यालों में खोया हुआ था, वो इस उलझन में था कि वो युविका को हाँ कहे या नहीं। तभी युविका ने उसके सामने चुटकी बजाकर कहा, तुम्हारे 2 मिनट खत्म हो गए हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट करने का मन नहीं है। खैर छोड़ो, मैं भी कहाँ एक छोटी सी कंपनी के सामने ऑफर लेकर आई थी। इतना कहकर युविका वहां से जाने लगी। तभी तरुण जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, रुक जाओ, मुझे ये डील मंजूर है, लेकिन ईशानी पूरे टाइम ऑफिस में नहीं रह पाएगी, उसे रूही की देखभाल भी करनी होती है और मेरी मॉम की भी उम्र हो गई है। तुम जानती हो कि हम हाउस हेल्पर अफोर्ड नहीं कर सकते। तरुण की डील के लिए हाँ कहते ही युविका के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी, उसका चेहरा दूसरी तरफ था। वो तरुण की तरफ पलटी और बोली, ओके मंजूर है, उसे बोल देना कि वो रोज 2 घंटे ऑफिस आ जाए, वो काफी होगा। तरुण ने उसकी बात पर हामी भरी, बाकी बातें बाद में करने का बोलकर युविका वहां से निकल गई। तरुण के ऑफिस से बाहर आते वक्त युविका के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। युविका ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, आज भी उतना ही बेवकूफ है, मुझे ईशानी से बात करने के लिए 2-3 दिन चाहिए ताकि उसे अच्छे से कन्विंस करके तुमसे छुटकारा दिलवा सकूं, फिर उसके लिए तुम्हारे सामने एक झूठी डील रखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। युविका ने तरुण को फंसाने के लिए एक चाल चली थी जिसमें वो आसानी से फंस गया था। दूसरी तरफ अभिमन्यु ईशिका से मिलने के बाद एक मीटिंग में चला गया था। वो शाम के लगभग 7 बजे के करीब घर पहुंचा। तब गार्डन एरिया में वसुधा और नक्श बैठे हुए थे। नक्श जब से यहाँ पर आया था काफी खोया हुआ रहता था और उसकी इस उदासी का कारण भी सब अच्छे से जानते थे। अभी भी कुछ देर टहलने के बहाने वो अपने कमरे से बाहर आया था। वसुधा को गार्डन एरिया में देखा तो वो उसके पास आकर बैठ गया। हालांकि वसुधा को अभिमन्यु के अलावा पूरी राजवंश फैमिली से कोई लेना देना नहीं था, पर नक्श की हालत देखकर उन्हें भी कहीं न कहीं उस पर दया आ रही थी।
वसुधा ने नक्श की तरफ देखकर सख्त अंदाज में कहा, लड़के तुम्हें यहाँ अभिमन्यु की मदद करने के लिए भेजा गया है और तुम हो कि पूरे दिन अपने कमरे में बैठकर दुख मनाते रहते हो। तुम्हारी खुद की बीवी पागल होकर अस्पताल में पड़ी है, उससे मिलना तो दूर, तुमने उसके बारे में पूछा तक नहीं। नक्श ने वसुधा की तरफ देखा और जवाब में कहा, हमारा तलाक हो चुका है दादी, तो मेरा उसे कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, समझ आता है, लेकिन जिसके जाने का गम बना रहे हो वो रिश्ते में तुम्हारी आंटी लगती है। वसुधा ने बातों की बातों में नक्श को उनके रिश्ते का एहसास करवाया। नक्श को एक बात सबसे ज्यादा कचोटती थी और वो थी इशिका का अभिमन्यु की पत्नी होना। पहले उसे ये उम्मीद थी कि अगर इशिका का पति कोई आवारा सड़क छाप हुआ तो वो उसे इशिका को हासिल कर लेगा, लेकिन अभिमन्यु के सामने तो उसकी जबान तक नहीं खुलती थी। वसुधा के शब्द नक्श के दिल में तीर की तरह लगे। उसने वसुधा की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा, प्यार करता था मैं उससे दादी, और वो। नक्श की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके कानों में अभिमन्यु की तेज आवाज पड़ी, जो अभी वहां आया था और उनकी बातों को सुन चुका था। अभिमन्यु ने तेज और सख्त आवाज में कहा, माइंड योर वर्ड्स नक्श, तुम जिसका नाम ले रहे हो वो मेरी वाइफ है और आई विल नेवर टॉलरेट दिस कि कोई मेरी वाइफ के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात सोचे। अभिमन्यु की आवाज सुनकर नक्श हड़बड़ा गया था। वो जल्दी से उठकर नजरें झुकाकर बोला, लेकिन सच को तो कोई नहीं बदल सकता ना, मैं नहीं जानता 2 साल पहले कैसे आपने उससे धोखे से शादी की थी, लेकिन उस वक्त हम साथ थे और वो मुझे पसंद करती थी। नक्श के शब्दों में बगावत झलक रही थी। अभिमन्यु नक्श के पास आया और उसी सख्ती के साथ बोला, अपनी गलतफहमी की दुकान कहीं और जाकर लगाना, जिस काम के लिए आए हो वो करो। हमारा जिंदल फैमिली के साथ में प्रोजेक्ट फाइनल हुआ है और ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर यहाँ आए हो तो कुछ काम करो। सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद 1 हफ्ते बाद इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट पार्टी है, जाकर मिस्टर जिंदल से मीटिंग करो और एक ग्रैंड पार्टी अरेंज करने में उनकी हेल्प करो। नक्श ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया, फिर वो वापस अपने कमरे में जाने लगा। वहीं उसके वहां से जाते ही वसुधा ने अभिमन्यु की तरफ देखा। नक्श ने जो भी कहा था उसके बाद गुस्से में अभी भी उसकी नाक लाल थी। वसुधा उसके पास आई और उसका हाथ सहलाकर बोली, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा करना सही नहीं है, खासकर तब जब अपनी पत्नी से मिलकर आ रहे हो। वसुधा की बात सुनकर अभिमन्यु ने उनकी तरफ हैरानी से देखा और धीमी आवाज में कहा, आपको कैसे पता मैं इशिका से मिलकर आ रहा हूँ? पृथ्वी से पूछा था, वसुधा ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और सिर हिलाकर कहा, मुझे पृथ्वी को भी समझाना पड़ेगा कि मेरे हर मोमेंट की खबर आपको देना बंद करें। अभिमन्यु इशिका से मिलकर आया था, फिर उसका मूड खराब हुआ था, ये देखकर वसुधा को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने टेबल पर से पानी का ग्लास उठाकर अभिमन्यु की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? कोई प्रॉब्लम है तो उसे बोलो कि हमारे पास वापस आ जाए, उसकी सिक्योरिटी हम देख लेंगे, हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। वसुधा के शब्द सुनकर अभिमन्यु का दिल और भारी होने लगा। उसका और इशिका का रिश्ता एक कदम आगे बढ़ चुका था, फिर भी गलतफहमियां थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अभिमन्यु ने वसुधा की तरफ देखकर भरी आवाज में कहा, याद है दादी, जब बचपन में नकुल राजवंश ने मुझे चाइल्ड ट्रैकिंग करने वाले लोगों के पास छोड़ दिया था, तब एक लड़की ने मेरी जान बचाई थी। हाँ, कैसे भूल सकती हूँ। और उस लड़की के चक्कर में तुम आज तक घुट रहे हो। प्रणाली ने बहुत फायदा उठाया है इस सबका, वसुधा ने जवाब दिया। उन्हें प्रणाली बिल्कुल पसंद नहीं थी। वसुधा को भी अभी तक सच का पता नहीं था। अभिमन्यु ने उनकी गलतफहमी दूर करते हुए कहा, नहीं दादी, वो प्रणाली नहीं, इशिका थी। इशिका का नाम सुनकर वसुधा के चेहरे के भाव बदल गए थे। वो हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। तभी अभिमन्यु ने कहा, हाँ दादी, वो इशिका ही है, और बहुत लंबी कहानी है। इशिका को अभी भी लगता है कि मैं प्रणाली से बंधा हुआ हूँ, इस वजह से पूरी तरह उसके साथ इस रिश्ते को नहीं निभा पाऊंगा। आज भी प्रणाली का कॉल आने पर वो अपसेट हो गई थी। हालांकि मैंने प्रणाली के नंबर ब्लॉक कर रखे थे, लेकिन प्रणाली की नर्स के नंबर उसी के नाम से सेज थे। इशिका मेरे साथ थी। मुझे डर है कि वो फिर से मुझसे अलग होने के बारे में ना सोचने लगे। पूरी बात सुनने के बाद वसुधा ने अभिमन्यु को सहलाते हुए कहा, अगर उसे कोई गलतफहमी है तो दूर करो बेटा। रिश्तों में इस तरह किसी तीसरे का आना अच्छा नहीं होता, खासकर तब जब हालात आपके खिलाफ हों। आप सही कह रही हैं दादी, पर उससे तो मिलने का मौका तक नहीं मिलता, अभिमन्यु ने मायूस आवाज में कहा। मौका नहीं मिलता तो निकालो, वसुधा ने जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुककर बोली, तुमने अभी किसी पार्टी का नाम लिया था, ऐसा करो वहां इशिका को बुला लो और फिर वहीं उससे बात कर लेना। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अभिमन्यु ने उनकी बात पर हामी भरी। हालांकि वसुधा ने उसकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल दिया था, पर फिर भी जब तक वो इशिका से बात नहीं कर लेता था, तब तक उसके दिल को चैन नहीं आने वाला था। वहीं इन सबसे अलग राधिका को होश आ चुका था। इस बात का पता चलते ही आदित्य उसके कमरे में पहुंचा। राधिका अपने कमरे में श्रुति के साथ कुमसुम बैठी हुई थी। आदित्य वहां अकेले आया था और राधिका की ऐसी हालत देखकर उन्हें बहुत दया आ रही थी। इतने सालों में भले ही रिश्तों में कितनी भी दूरियां क्यों ना आ रही हों, लेकिन आदित्य के लिए आज भी राधिका उनकी वही मासूम सी प्यारी बहन थी, जिसे वो अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। राधिका के कमरे में आते ही उसकी वो हालत देखकर आदित्य से बर्दाश्त नहीं हुआ। इस वक्त अर्पित भी उनके साथ नहीं था, इसलिए उन्होंने इधर उधर देखते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, अपना मूड ठीक करो, क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी बेटी तुम्हें पहली बार देखेगी, अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर उसे कैसा लगेगा? आदित्य यहाँ ईशानी की बात कर रहे थे। ईशानी के वजूद से पूरी तरह अनजान थी, तो वहीं उनकी बातें राधिका को हैरान कर रही थी। उसे मन ही मन डर लग रहा था कि कहीं उन्होंने इशिका को ढूंढकर उसे तो किडनैप नहीं कर लिया। मेरी कोई बेटी नहीं है, वो मर चुकी है, राधिका ने सख्ती से कहा, ताकि वो इशिका के जिंदा होने के सच को छुपा सके। वहीं उसकी बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। वो गहरी सांस लेकर बोले, वो जिंदा है, एक दो दिन में यहाँ पहुंच जाएगी। जानता हूँ आदर्श ने तुम्हें यही कहा था कि तुम्हारी बेटी पैदा होते ही मर गई, लेकिन वो जिंदा थी और उसने हमें उसे सौंप दिया था। आदित्य की बातें राधिका को एक के बाद एक नया झटका दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर इशिका को बचपन में ही बदल दिया गया था तो वो कौन सी बेटी थी जिसे मर्चेंट फैमिली को दिया गया था। अब वक्त आ गया है जब राधिका को ईशानी की सच्चाई पता चलेगी, पर अफसोस बहुत देर हो गई, ईशानी तो अब इस दुनिया में भी नहीं रही। खैर, एक दिन का गैप लेकर दिया है तो फुल लंबा पाठ है, और प्लीज यार पढ़कर कमेंट कर दिया करो, बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स रहता है आपका। स्टोरी पसंद नहीं आ रही है तो बता दो, बंद कर देते हैं, जल्दी खत्म कर देते हैं।